नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को दी मंजूरी। भाजपा ने विधेयक को बताया ऐतिहासिक। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, आपदा से राहत के मामले में विफल साबित हुई प्रदेश सरकार। और प्रदेश में लंबे समय से वर्षा व बर्फबारी न होने से फसलों पर विपरीत असर, किसानों बागवानों की चिंता बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया था। ये एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि ये ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि कानून, सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विकास पहलों के तालमेल और सभी जरूरतमंद लोगों को लाभ देने को बढ़ावा देता है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। प्रदेश भाजपा ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस देश में सनातन विरोधी की पहचान बना चुकी है और इस योजना का विरोध केवल राम नाम के कारण है। दूसरी ओर भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि ये विधेयक विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जाना ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा, सम्मान और भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजधानी शिमला के कमला नेहरू अस्पताल से बच्चों को खुराक पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभियान को प्रदेश में पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और पोलियो मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
हेल्थ सेक्टर में काफी परिवर्तन किया जा रहा है और 21 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है। मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को काफी अरसे से चलाया जा रहा है और इसमें हमें काफी सफलता मिली है। और निश्चित रूप से जहां भी हमारे जोनल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, पूरे प्रदेश में पल्स पोलियो का आज अभियान चलाया जा रहा है और पल्स पोलियो के द्वारा जो उससे संबंधित दवाइयां सारे हॉस्पिटल में हमने पहुंचा दी है।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहे। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को 22 और 23 दिसंबर को स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगे। नगर व ग्राम नियोजन और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान देश के सबसे सफल जन स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए 5 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को निर्धारित समय पर पोलियो खुराक पिलाना अनिवार्य है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में आई आपदा से राहत के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह विफल और संवेदनहीन साबित हुई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि 6 माह बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक क्षतिग्रस्त हुई सड़कों में मिट्टी और पत्थर भरवाकर उन्हें बहाल नहीं करवा पाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सैकड़ों गांव आज भी वाहनों की पहुंच से दूर है, जिसके चलते खासतौर पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक ओर प्रदेश बेरोजगारी, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से जूझ रहा है, वहीं आयुर्वेदिक अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाइयां तक भी उपलब्ध नहीं है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। सिरमौर जिला के राजकीय विद्यालय चांदनी के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू की गई है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से संचालित किया जाएगा। दूसरी ओर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार जनजाति व दुर्गम इलाकों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। किन्नौर जिला के राजकीय विद्यालय कोठी के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर है, जबकि पूर्व भाजपा कार्यकाल में 21वें स्थान पर था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल व अन्य साहसिक गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद व भाजपा महासचिव सिकंदर कुमार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार द्वारा राज्य में बन रहे फोरलेन के निर्माण से संबंधित आरोपों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केंद्र के सहयोग से हिमाचल में हो रहे विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में देश भर में ऐसे एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया है जिनकी कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं ने भी सराहना की है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वे केंद्र के सहयोग से ही संभव हो पाए हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बीती रात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात का समाचार है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। प्रदेश में लंबे समय से वर्षा व बर्फबारी न होने के कारण सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे में फसलों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, जिससे किसानों व बागवानों की चिंता भी बढ़ गई है। राज्य के मैदानी इलाकों में भी घने कोहरे के चलते इन दिनों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना किन्नौर में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को स्थानीय कृषि व बागवानी उत्पादों पर आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं को इस योजना के माध्यम से स्व सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। जिले के पूर्व विकास खंड में योजना के तहत 47 स्व सहायता समूहों के 114 सदस्यों को 45,60,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं कल्पा विकास खंड में 122 स्व सहायता समूहों से जुड़ी 474 महिलाओं को 188,89,000 रूपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। निचार विकास खंड में 25 स्व सहायता समूहों के 110 सदस्यों को 43,52,000 रूपए की धनराशि प्रदान की गई है। इसमें सेब, सूखे फल, पारंपरिक अनाज और स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो रहा है, साथ ही महिलाओं को घर के समीप रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी।
चंबा जिला की गोल्डन गर्ल सीमा ने कोलकाता में आयोजित विश्व स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धा में आज 25,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। धावक सीमा की इस सफलता पर चंबा जिला के लोगों में खुशी का माहौल है। जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने इस उपलब्धि के लिए सीमा को बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक, जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 को दी मंजूरी। भाजपा ने विधेयक को बताया ऐतिहासिक। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा आपदा से राहत के मामले में विफल साबित हुई प्रदेश सरकार। और प्रदेश में लंबे समय से वर्षा व बर्फबारी न होने से फसलों पर विपरीत असर, किसानों बागवानों की चिंता बढ़ी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।